जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता मोहिनी रात में मुझे जगाता प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती नींद पर होते योग के विजय माया के होते सहज पर अजय आराम नहीं मिलन चाहते बाबा संग आत्मा खिल जाते अपने कहा रात को अलविदा परवान हुआ क्षमा पे फिदा समय से पहले बाबा जगाते नयन खुलते ही मिलन कराते प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते माया के बंधन स्वयं कट जाते ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी मौसम की मार अब ना डराती सोना अब आराम नहीं माया है नींद अब अमृत नहीं विष का साया है कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है सुस्ती के धुन में बजी माया की लुरी है तप की राह में मन की हेरा फेरी है जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ सकल विश्व को तप से भरता अमृत वेला में तपस्वी जलता संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता नींद की घड़ी अब बीत चुकी है माया की छाया अब मिट चुकी है वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता योग विनी से आलस को राख करता मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे
ओम शांति। युगांतर का द्वार अमृत वेला। स्वयं के भाग्य को देखो और दूसरों को खुशी बांटो। अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते ही अपना परिवार का कार्य व्यवहार का मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा, लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते हो और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते हो। पीछे आवाज सुनाई दे रही है, बारिश की आवाज माइक की आवाज से बहुत ज्यादा तेज है। क्या सुना? स्वयं के भाग्य को देखो और दूसरों को खुशी बांटो। अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते ही अपना परिवार, कार्य व्यवहार और मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा, लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते हो और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते हो। सुनाई दे रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे। तो ऐसी एक बारिश में एक धर्मगुरु तेजी से भीगते हुए दौड़ रहे थे। एक व्यक्ति ने अपने घर की खिड़की से देखा और चिल्ला कर कहा, आप कैसे धर्मगुरु हो, भगवान की बारिश का अपमान कर रहे हो। भगवान बारिश बरसा रहा है और आप भाग रहे हो बारिश से। ये तो धर्म का अपमान है, परमात्मा का अपमान है। वो धर्मगुरु रुक जाता है और धीरे धीरे चलता है और पूरा भीगते भीगते जाता है और घर पहुंचते पहुंचते पूरा ही भीग जाता है। ठंड लगती है, बीमार पड़ता है, निमोनिया हो जाता है। अगले दिन वो अपने घर के खिड़की में और देखता है फिर से बारिश हो रही है और ये जो व्यक्ति है अब ये दौड़ रहा है। धर्मगुरु चिल्ला कर उस व्यक्ति से कहता है, कि तुम बारिश का, भगवान का अपमान कर रहे हो, भाग रहे हो। वो व्यक्ति कहता है, नहीं, भगवान की बारिश मेरे पैरों के नीचे ना आ जाए इसलिए भाग रहा हूं। व्यक्ति हर जगह अपना स्वार्थ साधते हैं। ये संसार स्वार्थ से भरा है, चिंताओं से भरा है, फिक्रों से भरा हुआ है। आज के बाबा के महावाक्य, बाबा कह रहे संसार के हर व्यक्ति को चार प्रकार की चिंताएं हैं, चार प्रकार की फिक्र है। कौन सी? पहली स्वयं की, दूसरी परिवार वालों की, और तीसरी अपने कार्य व्यवहार की, और चौथी मित्र संबंधियों की। ये चार प्रकार की चिंताओं से वो ग्रसित रहता है। और तुम कौन हो? तुम हो बेफिक्र बादशाह। तुम्हें कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं। दिन का आरंभ भी बेफिक्र और दिन का अंत भी बेफिक्र। खुशी तुम्हारे भीतर है और इस खुशी को बांटते रहो। तो आज के तीन सूत्र है, पहला बेफिक्र रहना, निश्चिंत। दूसरा खुश रहना। कल भी बाबा ने कहा था व्यक्त मुरली में, विघ्न विनाशक, विघ्न हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त है। क्या करने आते हैं? सिखाने। सिखाने आते हैं कि तुमने किसी पर जो विश्वास किया था उसकी वजह से धोखा मिला। अब सीखो, संभलो, फिर से वही गलती, फिर से वही भूल दोहराओ मत। यदि कोई हमें धोखा देता है तो उससे क्या सीखना है? भूल उसकी नहीं है, हमारी है। हमने विश्वास किया। संसार में चीजें होगी जाएगी, होती रहेगी जाती रहेगी, प्रवाह है। दुख आएगा दुख जाएगा, विकार आएंगे विकार जाएंगे, स्थाई कुछ भी नहीं है। इम्यूटेबिलिटी इज द ओनली लॉ। सब कुछ परिवर्तनशील है, बस यही एक मात्र चीज है जो परिवर्तित नहीं होती। कौन सी? कौन सा नियम? कि सब परिवर्तनशील है, सब बदल रहा है, सब अनित्य है, अस्थाई है। सब कुछ चला जाए परंतु खुशी न जाए। और तीसरा है भाग्य। अपने भाग्य को देखो, पर भाग्य के साथ एक और सूक्ष्म चीज करनी है। भाग्य को देखो खुश हो, परंतु साक्षी होकर देखना है भाग्य को भी, नहीं तो अहंकार आ सकता है। अपने भाग्य को भी साक्षी होकर देखो। जीवन में जो कुछ हो रहा है उसे समझो। जो कहानी बंद हो गई थी, क्लोज्ड हो गई थी जो किताब, वो फिर से खुली है। अधूरी कहानियां पूरी हो रही है, और जो कहानियां बंद हो गई थी, जो किताब बंद हो गई थी, ऐसी कुछ किताबें फिर से खुलती हैं। इसलिए अभिनय करते करते ये ना भूलना कि मैं दर्शक भी हूं, क्योंकि केवल अभिनेता बनकर रह जाएंगे तो फिर दुखी होते रहेंगे। इसलिए बेफिक्र खुश और अपने भाग्य को निहारो, परंतु कैसे? साक्षी होकर, डिटैच्ड। जब हम डिस आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, तब स्थिर रह सकते हैं। जब तदात्म स्थापित हो जाता है किसी भी रोल के साथ, तो वहां फिर इच्छाएं और अपेक्षाएं उत्पन्न होती है और वो दुखी करती है। और सबसे बड़ा भाग्य ये है कि भगवान साथ है। संसार के लोग भगवान को ना जानते हैं ना जानना चाहते हैं, उन्हें कोई खबर ही नहीं है उस परम की। चार प्रकार की चिंता है। स्व की बाबा को दे दी, परिवार वालों की वो भी उसको सौंप दिया। अब तू मुझे सौंप देख रहा है तो मेरे परिवार वालों को भी तू ही देख। तीसरा कार्य व्यवहार की, जो भी कार्य में, वर्क में, ड्यूटी में, सेवा में, कर्तव्यों में यदि टेंशन है तो उसको क्या कर देना है? ट्रांसफर, सौंप देना है। कल कहा था वरदान में बाबा ने, दान कर दो, अपनी कमजोरी को क्या करो? दे दो। उसी तरह अपनी चिंता, अपने पुरुषार्थ का टेंशन कैसे होगा, वो भी सौंप दो। एक उसी को सहारा बना लेना। जैसे यात्री कोई भटक गया हो, अंधेरा हो, और अचानक कोई आ जाए दिया लेकर और कहे कि यहाँ से जाओ, होठ फट रहे हैं, आँख जल रहे हैं, जब जीवन हो तपती रेत सा और शीतल दे जल दे वही है। जीवन जब तप रहा हो, ये नौ परिस्थितियां हैं जीवन की। सबसे पहली तपिश, सबसे पहली आग ही आग, चारों तरफ से आग अंगारे बरस रहे हैं, मित्रों की तरफ से परिस्थितियां, जीवन द्वंद, विकार, स्मृतियां, आकर्षण। जब जीवन हो तपती रेत सा और शीतल जल दे वही है। दूसरा, जब राहें हो सब उलझी और दिशा दिखाए वही है। किसी रेगिस्तान में यदि कोई यात्री भटक गया हो और कोई उसे राह दिखा दे, बाबा वो कंपास है जो भटके हुए राही को दिशा दिखाता है, दिशा सूचक यंत्र। जब भीतर हो बस तन्हाई, तीसरी परिस्थिति, मनुष्य का, मानव का सबसे गहरा दुख है अकेलापन। मेरा कोई भी नहीं है, न पति है न पत्नी है। एक जापानीज कवि था इस्सा, जापानीज में छोटी छोटी कविताएं होती है, हाइको जिसको कहते हैं, जो केवल एक या ज्यादा से ज्यादा दो लाइन की होती है बस, पर गहरे अर्थ समाये होते हैं उनमें। तो जो कवि था इस्सा, शायद ऐसा ही उसका कुछ नाम था, उसकी पत्नी मर गई, बहुत दुखी हुआ। पांच संतान थी, एक के बाद एक आंखों के सामने पांचों के पांचों मर गई, बहुत इतना दुखी। और कवि का हृदय, और जीवन में जब इतना दुख आ गया, अंदर तो बहुत नाजुक है। कोई कहता है आश्रम में जाओ, मोनेस्ट्री में जाओ, कोई साधु मिलेगा, कोई बौद्ध भिक्षु, उससे कुछ शिक्षा लो। वो जाता है, अपना दुख सुनाता है, ऐसा मेरे साथ हो गया, पत्नी मर गई, पांच बेटे थे वो भी चले गए, मैं अकेला बचा हूँ, 33 एज, मैं क्या करूँ, बहुत दुखी हूँ। वो भिक्षु कहता है, जीवन अनित्य प्रवाह है, चीजें आ रही है, चीजें जा रही है, तुम पकड़ो मत। वो घर जाता है और एक कविता लिखता है जिसको कहते हैं हाइकू। उसमें दो ही लाइन है, लाइफ इज बट ड्यू ड्रॉप, जीवन ओस की बूंद मात्र है, बट कविता पूरी हुई। जीवन, पता है मुझे कि जीवन अनित्य है और जीवन ओस की बूंद की समान है, अब है और अब चला गया, फिर भी आशा हृदय में ऐसी है कि वो जाती नहीं। बट एंड येट एंड येट एंड येट, क्या करूं, दिल मानता नहीं, पता है सारा ज्ञान, कभी लिखता है, परंतु लाइफ इज बट ड्यू ड्रॉप एंड येट एंड येट एंड येट, डैश डैश डैश, कविता पूरी हो गई। हाइकू, जब भीतर हो बस तन्हाई और साथ निभाए वही है। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई पिता है, और उसके बच्चों ने उसे छोड़ दिया है, और वो बीमार है और अकेला है और कमरे में है, और पत्नी नहीं है और कोई भी आसपास नहीं है, और अचानक कोई अदृश्य हाथ आता है, कोई व्यक्ति आ जाता है और उसकी संभाल करता है। उसी तरह भगवान हमारा परम मित्र है, हर ऐसी परिस्थिति में वो आ जाता है। जब भीतर हो बस तन्हाई और साथ निभाए वही है, जब अंधेरे में कुछ ना दिखे और चांद सा चमके वही है। जैसे बच्चा होता है रात को डरता है, डर लगता है उसको, कुछ भी नहीं दिखता है और अचानक उसकी माँ आ जाती है दिया लेकर, तो उसको कितनी राहत मिलती है। जब खो गया हो किनारा और गोदी में ले वही हो, जैसे कोई नाविक है और समुद्र में तूफान आ गया हो और उसे अब कुछ समझ नहीं रहा है, उसकी नाव डूबने को हो और एक बड़ा जहाज आ गया और वो बड़ा जहाज उस नाविक को अपनी ओर खींच ले, वैसे भगवान वो बड़ा जहाज है, सबसे सुरक्षित बंदरगाह उसकी गोद है। जब डर लगे हर कदम पे और साहस दे वही है, जब डर लगता है, जैसे कोई बच्चा है और उसको पहली बार भाषण करने को कहा गया है और उसे मंच पर भेज दिया गया है, कैसा डर लगता है उसको, और परंतु टीचर पीछे खड़ा है और कहता है तुम कर सकते हो, तो उसमें शक्ति आ जाती है और वो कर दिखाता है। हर डर के पीछे परमात्मा खड़ा है जो पीछे से साहस फूंकता है। जब डर लगे हर कदम पे और साहस दे वही है, जब भूल से डगमग पाव हो और कोई थामे वही है। जैसे किसी पहाड़ी पर हम चढ़ रहे और फिसल रहे, परंतु कोई मित्र साथ में है और जिसने हाथ पकड़ लिया और हम गिरने से बच गए। जब आंखें हो जाए नम सी और प्यार से पोछे वही है, जैसे कोई अनाथ लड़का है लड़की है जिसके माँ बाप गुजर गए और किस रिश्तेदारों ने उसे अनाथ आश्रम में भेज दिया है और वो लड़की चुपचाप अकेले में रो रही है, और कोई महिला आ जाए और उसे गोद में ले ले, कोई दाम्पत्य आ जाए और उसे नया घर दे दे और उसके आंसू पोंछ ले। जब मन भी हो भारी और हल्का करे वही है, जैसे कोई व्यापारी है, बहुत नुकसान हो गया, एकदम ही दुखी हो गया, इतना बड़ा घाटा हो गया, और फिर कोई उसको कहता है मंदिर में जाके बैठो और वो मंदिर में जाता है और वहाँ कोई भजन सुनता है और भजन सुनते ही क्या हो जाता है, हल्का हल्का लगता है। वही है, हाँ ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। ये 9 परिस्थितियां हैं जीवन की। जब जीवन हो तपती रेत सा और शीतल जल दे वही है, जब राहें हो सब उलझी और दिशा दिखाए वही है, जब भीतर हो बस तन्हाई और साथ निभाए वही है, जब अंधेरे में कुछ ना दिखे और चांद सा चमके वही है, जब खो गया हो किनारा और गोदी में ले वही है, जब डर लगे हर कदम पर और साहस दे वही है, जब भूल से डगमग पाव हो और कोई थामे वही है, जब आंखें हो जाए नम सी और प्यार से पोछे वही है, जब मन भी हो भारी और हल्का करे वही है, वही है, वही है, हाँ ये बाबा वही है। तो आज के 2 होमवर्क, सबसे पहला अपने जीवन की किसी एक चिंता को एक कागज पर लिखेंगे या और उसे जला देंगे या फिर फाड़ देंगे, यह है पहला कार्य। एक ऐसी चिंता जो 4 प्रकार की चिंताएं मुरली में बताई, स्व की, परिवार वालों की, कार्य व्यवहार की, मित्र संबंधियों की, या और भी कोई हो तो। घर गृहस्थी की, एक व्यक्ति बहुत ही दुखी था, उसका मित्र उसको समझाता है, देखो पति और पत्नी जो होते हैं ना, वो गाड़ी के दो पहिए होते हैं ना, उसके जैसे, दोनों को समझौता करते हुए साथ साथ चलना चाहिए। वो कहता है कब तक, क्योंकि एक पहिया ट्रैक्टर का है और दूसरा साइकिल का है, कैसे चलेगी ये गाड़ी। तो जो भी चिंता है, जो भी टेंशन है, जो भी वरी है, स्ट्रेस है, उसको क्या करना है, छोटे से कागज पर लिखना है और लिखकर हाथ में लेके बैठना है बाबा के कमरे में या योग में, ट्रांसलेट के सामने, चित्र के सामने, या फिर वैसे ही, और थोड़ी देर तक योग करना है। और उसके बाद या तो उसको जला दो या तो उसको फाड़ दो। तो ये है आज की पहला कार्य, वरी बास्केट। दूसरा है केयर फ्री क्रिंग प्रैक्टिस। जब भी योग में बैठेंगे तो क्या अनुभव करो, मेरे सिर पर एक ताज है। कौन सा ताज? बेफिक्र बादशाह का ताज। तो ये है आज का दूसरा कार्य। एक तारीख से 1988 की अव्यक्त वाणियां चालू करेंगे, तो वो वाणियां यहां पर केवल इंग्लिश में रिवाइज होगी। एक दूसरा जो होमवर्क दिया जाएगा वो अमृत वेले की जो सीरीज चालू है, जैसे अभी दो होमवर्क दिए जा रहे हैं उसी तरह से दिए जाएंगे। और जो 88 की मुरलिया है उसमें से रोज ग्रुप में 10 प्रश्न पोस्ट किए जाएंगे, उन प्रश्नों का उत्तर लिखते हुए वो लाइन पूरी खाली आपको लिख के भेजना है। 88 की टोटल 21 मुरलियां है, 21 मुरलियां, तो इन 21 मुरलियों में से एक एक मुरली से 10-10 महावाक्य। तो होमवर्क क्या रहेगा, उन 10 प्रश्नों को पढ़ना और उसका एक लाइन पूरी लिखना, मतलब 10 लाइन ये लिख के भेजना है। और वो 10 प्रश्न कौन बनाएगा, वॉलेंटियर सुखदेव भाई। 21 दिन 21 10-10 प्रश्न ग्रुप में पोस्ट करना है, ठीक है। और जो प्रश्न बनाएंगे उसका नियम है, चार ऑप्शन होने चाहिए, जो एक ऑप्शन होगा चौथे नंबर का वो एक ऐसा ऑप्शन होगा कि जो बिल्कुल ही असंगत है, जिसने मुरली नहीं पढ़ी वो भी उसको रूल आउट कर सकता है कि ये है ही नहीं। तीसरे नंबर का जो ऑप्शन होगा, जिसने मुरली पढ़ी है वो बता सकता है कि ये नहीं है जिसने पढ़ी है। और जो एक और दो ऑप्शन होगा, जिसने चार बार भी पढ़ी है उसके लिए भी वो कन्फ्यूजिंग हो कि ये है या वो है, ये है या वो है। दूसरा, किसी भी समानार्थी शब्द का प्रयोग ना हो, किसी भी समानार्थी शब्द का प्रयोग ना हो। दूसरा, जो भी MCQ हो उसमें वैरायटी हो, अलग अलग प्रकार के MCQ हो, केवल फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, कोई फिल इन द ब्लैंक्स, कोई प्रश्न उत्तर, कोई जोड़ी लगाना, ऐसे अलग अलग वैरायटी के वो प्रश्न हो, कोई ट्रू फॉल्स, कोई करेक्ट इनकरेक्ट, कोई भगवान की वाणी, माया की वाणी, कोई मनमत, श्रीमत, परमत, इस टाइप के। तो 21 दिन 21 प्रश्न पोस्ट, 21 दिन 10-10 प्रश्न पोस्ट होंगे, वो आपको केवल लिखना एक वाक्य, ठीक है। तो अभी हम लेंगे 10 प्रश्न, किस मुरली से, पीछे सुनाई दे रहा है क्या, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो मुरली की डेट है 1 अक्टूबर 1987 के 10 प्रश्न। पहला प्रश्न, पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल डैश बन जाती है, यह है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। जो आत्माएं पत्थर समान हैं वो इस प्यार के कारण पिघल कर क्या बन जाती है, पहला बर्फ, दूसरा लोहा, तीसरा शीतल, चौथा पानी। पानी, तो उत्तर है पानी। लोहा टोटली आउट, बर्फ, अब जिसने मुरली पढ़ी है उसको पता है बर्फ नहीं है, और पानी है या शीतल है, दोनों भी हो सकते हैं, तो दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग रहेंगे, तो उत्तर है पानी। अगला प्रश्न, कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाला माने लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है, सही है या गलत है? कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाला माने लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है, सही है, सही है। सहयोगी बनने की निशानी है आज सहयोगी और कल डैश बन जाएंगे, पहला उत्तर भोगी, दूसरा रोगी, तीसरा अधिकारी और चौथा सहजयोगी। उत्तर सहजयोगी। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है अथवा जीवन परिवर्तन का डैश है, हथियार, कारण, आधार, बीज रूप, बीज स्वरूप। उत्तर है बीज स्वरूप। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो, विश्व में ईश्वरीय परिवार के डैश का बीज बो रहे हो, नाम का, वृक्ष का, सफलता का, स्नेह का, स्नेह का। किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती है, ईश्वरीय प्यार, अलौकिक प्यार, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही डैश बाप को सिद्ध करता है, कौन से बाप को, ब्रह्मा बाप को, विचित्र बाप को, रावण बाप को, दाता बाप को? विचित्र बाप को, रॉन्ग, दाता बाप को। हरेक का चेहरा ईश्वरीय डैश संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती? उत्तर ईश्वरीय सुंदरता, पवित्रता, गुण, स्नेह। पूरी की पूरी मुरली स्नेह पर है तो सारे उत्तर स्नेह के इर्द गिर्द घूमेंगे, पर वो कौन सी मुरली ये पता रहना चाहिए। 1:10:87। आठवां प्रश्न, विशेष सर्वसत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करे तब ही डैश का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा, माया का पर्दा, ब्राह्मणों का पर्दा, बाप का पर्दा, प्रत्यक्षता का पर्दा? प्रत्यक्षता का पर्दा। नौवां प्रश्न, किस भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, घृणा भाव वाले, अनासक्त भाव वाले, निमित्त भाव वाले, सेवा भाव वाले? निमित्त भाव, रॉन्ग। अनासक्त भाव, सेवा भाव। लास्ट प्रश्न, वह भी दिन आएगा, कौन सा, जब सभी सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है तो एक डैश ही है, धर्म सत्ता, प्रेम सत्ता, परमात्म सत्ता, सतयुगी सत्ता, परमात्म सत्ता। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। तो क्या क्या देखा हमने, पहले तो अमृत वेले के महावाक्य देखे, दूसरा 3 सूत्र देखे, कौन कौन से, बेफिकर, खुशी, भाग्य, उसके बाद में 2 होमवर्क देखे, उसके बाद में जीवन की 9 परिस्थितियां देखी और ये 10 प्रश्न देखे। तो आज दादी का दिन है, दादी के टोटल 13 मैसेजेस आए थे भोग संदेश 27 तारीख से, उसमें जो अंतिम मैसेज था गुलजार दादी के द्वारा उसकी कुछ लाइनें हम पढ़ रहे हैं। उसको ध्यान से सुनेंगे और बहुत ही शक्तिशाली ये वाक्य है। वो 13 के 13 मैसेजेस ग्रुप पर पोस्ट कर देंगे, अगर हो सके तो 13 के 13 पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ सके तो 1 और 13वां ये 2 मैसेजेस पढ़ने हैं क्योंकि लंबे मैसेजेस हैं। तो इसमें गुलजार दादी के द्वारा आया हुआ ये 13वां मैसेज बाबा ने सुनाया, दादी बच्चे के रूप में जाएंगी लेकिन कहाँ जा रही है ना उसको स्वप्न में भी, लेकिन जहाँ जा रही है उनको स्वप्न में भी नहीं है कि बच्चा हो सकता है। क्यों ऐसा है? क्यों? क्योंकि आयु बड़ी है, भक्त है और थोड़ी आधी लाइफ वाले है, बच्चा पैदा करने वाली लाइफ से थोड़ी बड़ी आयु के है। तो दादी कहाँ जा रही है? ऐसे पहले तो भक्तों के घर में, और भक्त भी कैसे अधेड़ उम्र के, थोड़े से ज्यादा उम्र है, इसलिए उन्हों को स्वप्न में भी नहीं है कि हमारे को कुछ हो सकता है। लेकिन प्रवेशता की हलचल होती है ना, जब हलचल होती है तो उन्हों को आएगा कि यह क्या हो रहा है। अभी तो दादी वतन में थी, पहला जो संदेश है उसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे की इच्छा थी कि दादी वतन में रहे, और बाबा मूर्ख भी बच्चों की इच्छा पूरी न करे ये हो नहीं सकता। तो कितना दिन वतन में रहेगी? 13 दिन मुरली में मैसेज में है। अभी तो दादी वतन में थी, हलचल होगी तब सोचेंगी यह क्या हो रहा है। बाबा ने दिखाया कि वह माता और भाई बहुत भक्त है, वो दोनों क्या है, माँ बाप भक्त, पानी भी पीते हैं तो भगवान को पहले अर्पण करके पीते हैं, ऐसी उनकी नवधा भक्ति है। इस कलयुग में कोई नवधा भक्ति करे बहुत बड़ी बात है, भक्ति ही नहीं करते पहले तो संसार किसमें डूबा हुआ है, भोग विलास में, पैसों के पीछे। ऐसे इस कलयुगी संसार में, ऐसे इस सृष्टि पर अभी भी वो माँ बाप है, संपन्न परिवार, भक्त परिवार, और पानी पीते समय भी भगवान को अर्पित करते, श्री कृष्णार्पणम मस्तु, शिवार्पणम मस्तु, जो सच्चे भक्त होते हैं ना वो क्या करते, समर्पित करते हैं। दादी जब आएगी तो उनको क्या अनुभव होगा कि भगवान ने कोई अवतार भेजा है, बच्चा नहीं, किसको भेजा है, अवतार को भेजा है, कुछ होने वाला है। तो इस रूप में दादी जाएगी और एडवांस पार्टी को, साइंस वालों को, और आप ब्राह्मण आत्माओं को तीव्र पुरुषार्थ करने की सदा प्रेरणा देती रहेगी। तो अभी कितनी उम्र हो गई होगी दादी की? 17-18 वर्ष। तो ये थे दादी के लिए जो संदेश आया था उसमें से महावाक्य। तो आज की कविता का शीर्षक है सत्य प्रकाश। किसका है? आर्य समाज की एक किताब है सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती की, उनके लिए वो मुख्य किताब है, बाइबल है, जो उसमें लिखा है वही सत्य है, बाकी सब झूठ। सत्यार्थ प्रकाश, उसके आधार पर ही आर्य समाज है, और वेदों की बहुत सुंदर सुंदर बातें उसमें लिखी हुई है और उसे मुख्य ग्रंथ माना जाता है। तो अभी हम सुनेंगे सत्य प्रकाश। ओम शांति।
ओम शांति। एक तो सत्य प्रकाश है, दूसरा है सत्य प्रकाश है। एक एटर्नल लाइट है, एक ट्रू लाइट है, दोनों शिव बाबा हैं। शिव बाबा से हमको बहुत कुछ मिला है, ब्राह्मण परिवार मिला है, ब्राह्मण जीवन मिला है, तो शिव बाबा से वो सत्य प्रकाश से हमको क्या मिला है वो आपको पढ़ के सुनाएंगे। सत्य प्रकाश से सच्चा ज्ञान मिला, द्वापर युग से अनेक ज्ञान हम उठाए हैं लेकिन अभी सच्चा ज्ञान मिला। सत्य प्रकाश से सच्चा मित्र मिला, ट्रू एटर्नल फ्रेंड सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश से सत्य संगठन मिला, तो दूसरा दूसरा संगठन में हम गए थे, अभी सत्य संगठन मिला, वो भी हमारे लिए एंजल ऑफ शिवा मिला, तो ये हम सत्य प्रकाश से मिला। सत्य प्रकाश से सच्चा बाप मिला, सत्य प्रकाश से सच्चे संस्कार मिला, अनेक संस्कार में भटके हुए थे, अभी वह सत्य संस्कार मिला। सत्य प्रकाश से सच्चा संबंध मिला, सच्चा संबंध मिला, दो ब्राह्मणों का संबंध और परिवार का संबंध, बाबा से संबंध, एटर्नल रिलेशनशिप वो मिला। सत्य प्रकाश से सच्चा वातावरण मिला, जैसे हमको सेंटरों में और मधुबन में और एक रिट्रीट सेंटर में सच्चा वातावरण मिला, ऐसे वातावरण कहीं नहीं मिल सकता। सत्य प्रकाश से सच्चा मधुबन मिला, मधुबन मिला ना, हर एक जो भी सेंटर है मिनी मधुबन है, ये मधुबन हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं और दुनिया में अनेक मधुबन भी हैं, इधर उधर मधुबन कहते हैं लेकिन सच्चा मधुबन हमको मिला। सत्य प्रकाश, हाँ मधुबन होटल है और उधर मथुरा वृंदावन के पास उधर भी एक मधुबन है। सत्य प्रकाश से सच्चा संगम युग मिला, अनेक संगम युग बीत किए इस ये सत्युग से और त्रेता युग जो संधि है, और त्रेता युग से द्वापर युग वो भी संगम युग है, और द्वापर से कलयुग, अभी सच्चा संगम मिला, युग मिला। सत्य प्रकाश से सच्ची आंख मिला, पहले कैसे आंख हमारा स्थूल आंख से, लेकिन अभी पवित्र आंख मिल गई, सारे को पवित्रता की दृष्टि से देखते हैं, श्रेष्ठ वृत्ति से देखते हैं, श्रेष्ठ गुणों को देखते हैं, इसीलिए सच्ची आंख मिली। सत्य प्रकाश से सच्चा परिवार मिला, संगठन मिला, जो गृहस्थ का परिवार मिला, ब्राह्मणों का परिवार मिला। सत्य प्रकाश से सबको स्वीकार किया, जो ज्ञान मिला हर एक को स्वीकार किया, कैसे भी गुण हो, कैसे भी उसका कमजोरी हो, पुरुषार्थ हो, हम उसको स्वीकार किया, यह हमारा परिवार के है, उसको अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, इसीलिए सबको स्वीकार किया। सत्य प्रकाश से खुद को चेक करने का अवसर मिला, सत्य प्रकाश से हम दूसरों को चेक करते थे, अभी हम खुद को चेक करने का अवसर मिला, बाहर देखते थे अभी अंदर झांक के देखते हैं। सत्य प्रकाश से करुणा का भाव उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, क्योंकि जो बेहद का करुणा जो है, कंपैशन है पूरा वर्ल्ड के लिए, वो बेहद का हो गया हमारा, नहीं तो लिमिटेड था हमारा कंपैशन, अपना परिवार का था, अपना दोस्त का था, अभी बेहद में कंपैशन है, पूरा विश्व के लिए करुणा उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। सत्य प्रकाश से निरंतर सच्चा प्यार मिला, बाबा बोलते हैं कि आप याद करो नहीं करो मैं तो आपको याद करूंगा, आप गुड नाइट बोलो नहीं बोलो मैं तो आपको आके गुड नाइट बोलूंगा, वो निरंतर प्यार, एक बार जुट गया शिव बाबा से वो निरंतर प्यार बहती रहती है, वो सच्चा प्यार मिला, वो प्यार से हम सभी पल रहे हैं। ओम शांति।
श्रीकांत भाई, अग्निपथ, तो ये जो कविता जो आपने अभी सुनी थी वो हमको बहुत बहुत प्रिय है, तो अभी हम इसको एक बार सब मिलके गाएंगे। जो नौ परिस्थितियां सुनी जीवन की, हम गाएंगे, हमारे पीछे आप सब गाएंगे। जब जीवन हो तपती रेत सा और शीतल जल दे वही है, जब राहे हो सब उलझी और दिशा दिखाए वही है, जब भीतर हो बस तन्हाई और साथ निभाए वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। जब अंधेरे में कुछ न दिखे और चांद सचमके वही है, जब खो गया हो किनारा और गोदी मिले वही है, जब डर लगे हर कदम पर और साहस दे वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। जब भूल से डगमग पाव हो और कोई थामे वही है, जब आंखें हो जाए नम सी और प्यार से पूछे वही है, जब मन भी हो भारी और हल्का करे वही है, ये बाबा वही है। कौन सा वाला? शिव बाबा वही है। हाँ, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। ओम शांति।
जब जीवन हो तपती रेत सा और शीतल जल दे वही है, जब राहे हो सब उलझी और दिशा दिखाए वही है, जब भीतर हो बस तन्हाई और साथ निभाए वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। जब अंधेरे में कुछ न दिखे और चांद से चमके वही है, जब खो गया हो किनारा और गोदी में ले वही है, जब डर लगे हर कदम पे और साहस दे वही है, जब डर लगे हर कदम पे और साहस दे वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। मेरे हर सांस में जो समाया है, हर पल साथ निभाया है, मेरे हर सांस में जो समाया है, हर पल साथ निभाया है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है।
बाबा बिना सुनी
ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है, ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है। जब भूल से डगमग पावो हो, हर कोई थामे वही है। जब आंखें हो जाए नम सी, हर प्यार से पूछ वही है। जब मन भी हो भारी, हर हल्का करे वही है। जब मन भी हो भारी, हर हल्का करे वही। शिव बाबा वही है, हाँ ये बाबा वही है, शिव बाबा वही है।